أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ کیا ہے کہ عصر حاضر میں عورت کی کامیابی کی کیا بنیادیں ہیں. اصل میں اس کی ایک ریکویسٹ آپ لوگوں کی طرف سے آئی اور میں نے سوچا کہ چلیے اسی بہانے بہت ساروں کا فائدہ ہوگا. تو بنیادی طور پہ آج کے دور میں کامیاب عورت کا مغربی نقطہ نظر کیا ہے اور اسلامی نقطہ نظر کیا ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آج کی دور کی عورت اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے تو کیا اس کے لیے اس کو اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھانے پڑیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکویلٹی کا نام لے کر، کبھی ویمن رائٹس کا نام لے کر خواتین کو جو احساس کمتری دلوا دیا گیا کہ ایک عورت جو کام نہیں کرتی، جو کماتی نہیں، جو اس ملک میں ٹیکس پے نہیں کرتی اور بس وہ گھر میں ایک عورت ہے، کچھ بھی نہیں کرتے، اور وہ ایک ناکام عورت ہے. اس کے لیے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، ورکنگ وومن، نان ورکنگ وومن. حالانکہ ایک عورت فل ٹائم ماں، بہن، بیوی، بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے رول ادا کرتی ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں اس بات کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بہترین طریقے سے شرح صدر عطا فرمائے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اگر ہم قرآن پاک میں سے چند آیات کے وہ ٹکڑے نوٹ کر سکیں کہ جن کے اندر عورت اور مرد کے آپس کے تعلق کی بات کی گئی، اور یہاں یاد رکھیے کہ عموماً جہاں شوہر اور بیوی کی بات ہے، عورت اور مرد کی نہیں. ایک بہت بڑی غلط فہمی جس کو شروع میں سمجھ لیجئے کہ عورت اور مرد کے نام کے ساتھ ہی شوہر اور بیوی کی بات کر دی جاتی ہے، اور کبھی عورت اور مرد کو دو کمپوننٹ کر کے نہیں بلکہ کمپیٹیٹر کہہ کر بیان کیا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے پہ لے آتے ہیں. حالانکہ کیا اگر ایک کی تعریف ہوگی تو دوسرے کی نہیں ہوگی؟ تو اس طرح کی باتوں کو دور کرنے کے لیے چند مقامات قرآن پاک کے نوٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. کیا مطلب ہے اس حصے کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کے بھی حقوق ہیں اور عورتوں کے بھی. کیسے ہیں، کیا ہوتا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، تو اس کے بارے میں ہمیں شرح صدر ہونا چاہیے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ طلاق کا موضوع چل رہا تھا اور اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ایک درجہ حاصل ہے. چونکہ طلاق کے موضوع میں یہ بات آئی ہے، تو بس اس ایک درجے کو اگر ٹیکس کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو مراد کیا ہے کہ عورت طلاق دے نہیں سکتی، مرد دے سکتا ہے. دیٹس اٹ. عورت طلاق مانگ سکتی ہے، اور اس کی بڑی صاف واضح ہے کہ جب نکاح ہوا تھا تو مرد کی طرف سے آفر آئی تھی اور مرد نے سارے ایجاب و قبول اور اس کے سارے خرچے اخراجات کو لیا تھا. تو اگر ایک مرد جس کے لیے شادی ایک مہنگی چیز تھی، اگر اس کو عورت بھی طلاق دینے لگ جائے تو مرد کے لیے تو یہ ایک بہت مشکل چیز ہو گئی. اور اگر اس کو عمومی طور پہ دیکھا جائے تو بس میں اس کو اکثر کہہ دیتی ہوں کہ 50-50 نہیں، ایکویلٹی نہیں، 49-51. بس علیہن درجہ میری نظر میں مرد کا 51 پارٹ اور عورت کا 49. بس اس کے بعد نہ تو یہ کوئی تقابل ہے، نہ یہ سیاسی رہنما ہے جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، نہ یہ مذہبی رہنما ہے یا کچھ اور ایسی چیزیں ہیں. لہٰذا ایسی باتوں میں پڑھ کر ایک دوسرے کے دشمن کیوں ایک دوسرے کو ثابت کیا جائے. پھر اسی طرح سے دوسرا مقام اگر ہم نوٹ کریں تو سورۃ بقرہ ہی کی آیت نمبر 282 کا ایک ٹکڑا ہے جس کو عورت اور مرد کی گواہی کے طور پہ لوگ بہت زیادہ پیش کرتے ہیں. فرمایا، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. اب اس کی پوری آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں، قرآن پاک کی طویل آیتوں میں سے یہ آیت ہے. لیکن جو ٹکڑا ہمارے موضوع سے متعلق ہے اور وہ کیا ہے، फरमाया, फिर अपने मर्दों में से दो मर्दों की इस पर गवाही करा लो, और अगर दो मर्द ना हों तो एक मर्द और दो औरतें हों। ठीक है, तो यहाँ भी गवाही को एक किस्म का हक समझकर पेश करके बहुत फ्लर्ट किया जाता है कि देखो देखें, इस्लाम में औरत की गवाही आधी है मर्द की गवाही से। सवाल यह है कि गवाही देना कहीं ये कोई हक है? ये तो जिम्मेदारी है। अल्लाह ने औरत को जिम्मेदारी से पाक रखा। ये ऐसे ही है कि एक मेज को एक मर्द उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दे, अच्छा औरतों ने उठाना है तो दो औरतें मिलकर उठा ले, दैट्स इट। औरत नाजुक है, अंदाम है, हर वक्त कमर नापती रहती है, अपने वेट को वॉच करती है, उसको हर वक्त अपने फिगर की फिक्र है, नज़ाकत है उसमें। तो अगर अल्लाह ने गवाही उठवाने की जिम्मेदारी एक औरत की बजाय दो पर डाल दी तो क्या ये जुल्म हो गया? ये सिर्फ ना समझी और पहले से दिलों में कुछ ग्रज रखने वाली कैफियत होती है। तीसरा मुकाम नोट कीजिएगा, सूरत निसा की पहली आयत 1। इसको खुतबा निकाह में भी शामिल किया जाता है और मुझे लगता है कि पूरी इंसानियत को ये पैगाम है अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नास उत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलककुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसाउं, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और इसी जान से इसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। इसी अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो, और रिश्ते और कराबत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज करो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। आई विश के खुतबा निकाह का ये तर्जमा उस वक्त मौजूद लोगों को भी समझ आ रहा हो जो ख़ास तौर पे अब निकाह के नाम पर महफिलें सजाई जाती हैं और वहाँ भी एक किस्म का फंक्शन और बढ़ा लिया जाता है, लेकिन निकाह का खुतबा एक मजहबी रिचुअल समझते हुए बड़े महदूद लोगों तक पहुँचता है। हालांकि इसमें दो तकवों की बात करके, अल्लाह के मामले में तकवा और इंसानों के मामले में तकवा क्या होना चाहिए उसको पेश करके अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि जब तक अल्लाह का खौफ नहीं होगा ना अल्लाह के हक माने जाएंगे, ना कबूल किए जाएंगे और ना इंसानों के हकूक। शौहर बीवी का ताल्लुक हो या किसी और ताल्लुक को, देखिए अल्लाह के डर के बगैर ये हक दिए जा ही नहीं सकते। तो गोया कि आपने देखा कि औरत और मर्द की निकाह की सूरत में जो बंधन बनता है उनका आपस में, उस पे भी रहनुमाई दी गई। इसके अगला मुकाम है सूरत निसा की आयत नंबर 7। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वलक्रबूना वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वलक्रबूना मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुरा नसीबम मफरूदा। अब इस आयत को अगर आप देखें तो मर्दों के लिए उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, और औरतों के लिए भी इसी माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, ख्वाह थोड़ा हो या बहुत, और ये हिस्से अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हैं। यह है जी विरासत में औरत और मर्द के हिस्से की बात। मेरी ख्वाहिश है कि आज हर मौजू पर हल्की हल्की बात हो जाए ताकि हम सिर्फ वन साइडेड ही बात ना करें और बात ज़्यादा कुरान और हदीस से ही हो ताकि किसी के अफकार या नज़रियात की नज़र इसको ना किया जाए। तो विरासत में भी अल्लाह ताला ने औरत को भी हिस्सा दिलवाया। इस्लाम से पहले तो औरत के पास हिस्सा भी नहीं था। अल्लाह ताला ने कहीं इसको एक हक में रखा, कहीं इससे ज़्यादा। तो ये कहना कि जी बेटी का हिस्सा आधा है, बेटे का पूरा, ये भी नासमझी की बातें हैं। हालांकि माँ और बाप दोनों का एक जैसा हिस्सा है। फिर इसी तरह भाई बहनों के हिस्सों के लिए अगर मैं आयत ना भी पढूं तो सूरत निसा की आयत 12 में से भी अगर आप देखना चाहे, वइन काना रजुलुन यूरासु कलाला अव इमरातुन वलहु अखुन व उख्तुन फलिकुल्लिम वाहिद मिनहुम अस्सुदुस। ठीक है, कलाला यानी वो शख्स, औरत मर्द दोनों में से कोई एक जिसका बच्चे, जिसका बेटा या उसके आगे कह लीजिए कि माँ बाप में कोई ना हो, तो भाई बहनों को जब हिस्सा मिलेगा तो बराबर मिलेगा। यानी एक औरत मरती है तो उसके भाई बहनों को हिस्सा, या एक मर्द मरता है तो उसके भाई बहनों को हिस्सा एक ही जितना मिलता है। तो गोया कि फिर ये बात भी चली गई कि यहाँ भी किसी किस्म की ज्यादती है। आगे चलते हैं तो सूरत निसा ही की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बादिल लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मक्तसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मक्तसबना। और जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरे के मुकाबले में ज्यादा दिया है, इसकी तमन्ना न करो। जो कुछ मर्दों ने कमाया है, इसके मुताबिक इनका हिस्सा है, और जो कुछ औरतों ने कमाया है, इसके मुताबिक इनका हिस्सा है। हाँ, अल्लाह से इसके फजल की दुआ मांगते रहो। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखने वाला है। वसलुल्लाह मिन फजलिही इन्नल्लाह का नबी कुल्ली शयइन अलीमा। इसमें जनरल बात है, दुनिया के हकूक और फराइज जिम्मेदारियों के नाते से औरत और मर्द में कुछ फर्क है 19-20 का, लेकिन आखिरत के दर्जों के एतबार में कोई फर्क नहीं। यानी दुनिया में अगर एक मर्द को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने का पाबंद किया गया तो औरत को नहीं किया गया, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि अगर औरत जमात से पढ़ती है तो उसका अजर कम होगा। तो जन्नत में कोई ऐसी डिस्टिंग्विशनेस नहीं होगी कि जिससे पता चले कि जी ये जरा हल्के दर्जे की जन्नत है, इधर सारी औरतों को डाल दो, और ये आला दर्जे की जन्नत है, इसमें मर्दों को डाल दो। हाँ, मर्दों का तो दिल ही ना लगे उस जन्नत में जिसमें औरतें कोई अलग रख दी गई हों। आगे चलते हैं, एक और आयत जो खास तौर पे इस मौजू पे बहुत अहम है, और फिर उसके बाद हम बाकी आयत मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगी, आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। सूरत निसा की आयत 34 है, जिसमें शौहर और बीवी के नाते से बुनियादी तौर पर और अमूमी तौर पर एक मर्द एक औरत पर क्या हौकियत रखता है, ये है जी 34 निसा। अर रिजाल कवामूना अल निसा अलनिसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद वबिमा अन्फकू मिन अमवालिहिम फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफिज़ातुन लिल गैब बिमा हफिज़ल्लाहु वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मदाजी वद्रिबूहुन्ना फ़इन अतानकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाहा काना अलियन कबीरा। मर्द औरतों पर कवाम है इस बिना पर कि अल्लाह ने इनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। बस जो साले औरतें हैं वो इताशार होती हैं, और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में इनके हकूक की हिफाजत करती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो इन्हें समझाओ, ख्वाबगाहों में इनसे लहदा रहो और मारो, फिर अगर वो तुम्हारी मती हो जाएं तो खामखा इन पर दस्तराजी के बहाने तलाश ना करो। यकीन रखो कि ऊपर अल्लाह मौजूद है जो बड़ा और बाला तर है। ये आयत मर्दों को कवाम बना रही है। ये है असल में शौहर बीवी के बीच के मामलात की बात, कि मर्द औरतों पर कवाम है, और कवाम से मुराद हाकिम नहीं है, केयर टेकर, मुदब्बिर, काम करने वाला, जिम्मेदारियां उठाने वाला। जिस्मानी तौर पे मर्द मजबूत है। अगर आप इस आयत में देखें तो दो वजूहात अल्लाह दे देते हैं मर्दों की कवामियत की। एक क्या है, बिमा फद्दल अल्लाहु बादहुम अला बाद। जिस्मानी तौर पे मर्द को स्ट्रांग होना चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। औरत बात बात पे रोती है, मर्द तो रोता अच्छा नहीं लगता। औरत छोटी सी बात पे डर जाती है, मर्द नहीं डरता। औरत में जुर्रत कम होती है, मर्द में जुर्रत ज्यादा होनी चाहिए। यानी आम तौर पे फिजिकली मर्द को स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरी बात है कि वह भी मन फकू, ये है असल में इक्वालिटी को काटने वाली बात, जो इस पे हम बात आगे करने लगे हैं इंशाल्लाह। मर्द के ऊपर जिम्मेदारियां डाली हैं अल्लाह ने, माली तौर पे मुआशी जिम्मेदारियों का बोझ मर्द पे है, और इसकी बुनियाद पड़ जाती है शादी के खर्चे पे। इस्लाम में औरत जो औरत के घर वालों पर एक रुपये का भी खर्चा नहीं है। मर्द जो अपने घर को बसा रहा है, उसको अपने बच्चों के लिए माँ चाहिए, अपने जज्बात की तस्कीन के लिए एक औरत चाहिए जो उसकी इज्जत की, जान माल की, उसकी निगाहों की हिफाजत करे, क्योंकि निकाह नज़र को झुकाता है, आधा दिन मुकम्मल होता है। तो मर्द का घर बन रहा है, बेचारी औरत तो अपने घर से जा रही है। आज तो हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहने वाली कहानी है ना, कहते हैं बेटी की शादी करनी है खर्चा दे दो। नहीं, ये बोले बेटे की शादी करनी है तो खर्चा चाहिए। मर्द अपने घर में जिसको ला रहा है उसको बैठने का, रखने का, जो भी प्रॉपर इंतजाम हो वो मर्द के जिम्मे है। यहां से औरत को पता चल जाता है कि मैं एक महफूज हाथ में जा रही हूं। आज हमने जब इसको खत्म किया, और माजरत के साथ आते हुए वक्त में तो मैं देख रही हूं कि जो एक सुन्नत के नाम पे वलीमा था वो भी चला गया। उसको भी रिसेप्शन के नाम पे शादी के दिन पे मर्ज करके कहते हैं, लड़की और लड़के दोनों का एक ही फंक्शन है, और असल में वो दिन होता है जिस दिन निकाह के बाद लड़की अपने ससुराल जाती है, लेकिन उसी को वलीमे में डाल के आधा खर्चा लड़कियां लोग से ले लेते हैं। यानी जो थोड़ी बहुत सुन्नतें या रह गई थी हमारी जिंदगी में वो भी चली गई। करना है तो ऐसा कीजिए कि लड़की को एक दिन पहले निकाह करके भेज दीजिए और अगले दिन वलीमे को आप जो मर्जी कह लीजिए। लेकिन कितने खामोश तरीकों से शैतान हमारी जिंदगियों से चीज़ों को लाता जा रहा है। तो ये चंद आयात थी इस पैगाम के लिए, जिसके ऊपर अब थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहूँगी, और जिस मौजू को आज हम इस मुख्तसर से सेशन में टच करेंगे वो क्या है, कामयाब औरत का मगरबी और इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है। ये मौजू पहले भी था लेकिन ख़ास तौर पे गुज़श्ता सदी से ये मुसलसल ज़ेर बहस है कि माशरे में कामयाब औरत कौन होती है। मगरबी माशरे में उस खातून को कामयाब औरत करार दिया जाता है जो कामयाब मुआश रखती हो, जो माली तौर पे खुद मुख्तार हो, इंडिपेंडेंट है, जी अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, और इसी तरह जो घर और कार की मालिक हो। लिहाजा ऐसी औरतें इस माशरे में रोल मॉडल के तौर पे जानी जाती हैं, और वो इस मेयार पे जब पूरी उतरती हैं तो कामयाब हैं, और अगर वो नहीं करती तो नाकाम है। हद तक कि आपको पता है कि ब्रिटिश वजीर आजम टोनी ब्लेयर की बीवी, बजाहर चार बच्चों की माँ चेरी ब्लेयर, जो एक कामयाब वकालत का कैरियर रखती है, उसका जिक्र अक्सर रोल मॉडल के तौर पे किया जाता है। कहते हैं देखे ना, खुद अपना कमा के खा रही है, हालांकि वजीर आजम की बीवी है। दूसरी बात, इसी तरह उस माशरे में ये राय भी आम है कि बाप या शौहर पर इन्हिसार करना औरत को माशरे में कमतर दर्जे का मालिक बना देता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि वो औरत जो माँ या बीवी होने के साथ कोई भी जरिया माश नहीं रखती, इसकी कोई अहमियत ही नहीं, या वो एक नाकाम औरत है, जी हाउसवाइफ। बड़ी शर्मिंदगी से औरतें झुकाती हैं सर। अक्सर दर्द से पहले मैं जब थोड़ा लोगों को समझना चाहती हूँ तो पूछती हूँ, अच्छा आप क्या करती हैं? वो, जी मैं डॉक्टर हूँ, मैं फुलाँ हूँ, मैं बुलाऊँ हूँ, और मैं वर्किंग वूमेन। और दूसरी से वो जो सर झुका के कहती, जी मैं तो बस हाउसवाइफ हूँ। क्या वो एक नाकाम औरत है? इसलिए इस माशरे में जब भी किसी औरत से ये सवाल किया जाए कि आपका पेशा क्या, आप क्या करते हैं, तो शर्मिंदगी महसूस करती है, जी मैं बस एक माँ हूँ, मैं घरेलू खातून हूँ। और इसकी वजह यह है कि मगरबी माशरे में एक पेशावर खातून यानी एक वर्किंग लेडी को एक कमोडिटी यानी माले जिन्स के तौर पे देखा जाता है। उसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो मईशत में माली तौर पे कितना हिस्सा डाल रही है। फिर इसी तरह एक अगली चीज़ नोट कर सकते हैं कि मगरबी माशरे में मेल एंड फीमेल यानी मुजक्कर और मुअन्नस का माशरे में किरदार, इसके हवाले से बहुत तब्दीलियां आई हैं। आज एक खानदान में औरत को भी कमाने का उतना ही हक होना चाहिए जितना मर्द को है। 1996 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों की इस बारे में राय ये थी कि ये सिर्फ मर्दों का काम है। अब आप देखिए कितने साल हुए, 1996 को गिनिए, 26 साल पहले की ये कहानी है। उस वक्त वो भी कहते थे कि ये मर्द का काम है, वो खानदान की किफालत करे। अगर आप देखें तो 1984 में 65% थी, जो कि 1994 में कम होकर 43% रह गई। यानी वक्त के साथ लोगों की सोचों में तब्दीली आई। इस वक्त बरतानिया यानी ब्रिटेन में 45% खवातीन काम करती हैं, और अमेरिका में वर्किंग वुमेन का परसेंटेज 78.7% है। यानी इतनी औरतें काम करती हैं और बाकी हाउसवाइफ हैं। और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स कामयाब औरत के इस मेयार को ऑलवेज अप्रिशिएट करती है, हौसला अफजाई करती है, इसलिए ऐसी औरतों की बहुत तारीफ की जाती है जो कि अपनी जिंदगी में एक कामयाब कैरियर हासिल कर चुकी हों। और इसी तरह ऐसी माओं के लिए मुआशी फवायद का ऐलान भी करती हैं जो काम करने वालों में शामिल होना चाहती हैं। यानी वो इंसेंटिव दे रहे हैं औरतों को कि आप काम कीजिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी जिसका टॉपिक क्या था, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर टेकिंग केयर ऑफ किड्स, यानी कौमी स्ट्रेटेजी बराए बच्चों की देखभाल, इसको मुतारफ कराया, इंट्रोड्यूस करवाया। इसके मुताबिक बच्चों की देखभाल के लिए बहुत सी जगह फराहम की जाएंगी ताकि वो औरतें जो काम करती हैं वो बच्चों को देखभाल के लिए उन जगहों पे छोड़ दें। यानी आप कह लें कि अपने बच्चों को किसी और के पास छोड़ें जो उनके बच्चों की बेबी सिटिंग करें, टेक केयर करें, और खुद जाकर पैसे कमाएं। इस तरह इनको फिर बहुत सारे माली फवायद ऑफर किए गए, टैक्स में छूट दी जाती है ताकि वो अपने बच्चों की देखभाल पर उठने वाले अखराजात को बर्दाश्त कर सकें। फुल टाइम मदर्स नामी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो सरबराह है ना, उसका नाम है जिल करबी। वो कहता है कि ऐसी औरतों के लिए बहुत सारे माली फायदे हैं जो काम करती हैं, लेकिन घर बैठी औरतों के लिए कोई माली फ़ायदा नहीं। यानी हम अपनी आंखों से देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप का अल्लाह ने मुख्तलिफ कोना कोना दिखा दिया, अमेरिका को देख लिया। असल बात यह है कि सोच बदल दी जा रही है। वो कहते हैं ना, जो ना खूब था वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। और हमारी बदकिस्मती यह है कि वो मुस्लिम ख़वातीन जो मगरिब में रह रही हैं, वो इस सोच से बहुत मुतासिर हुई तो हैं, हमारे तो अपने मुल्कों के लोग भी मुतासिर हो गए। आप देखिए कि जब आप किसी भी माशरे में रहते हैं ना, तो आपको फिर कुछ ना कुछ तो उनकी चीज़ें भी मुतासिर करती हैं। हम हमेशा इस्लाम की चीज़ों से कम और गैर इस्लामी चीज़ों से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। आप देखिए कि बाहर की दुनिया में तो इंसान एक्सपेक्ट करता ही है ना, बाहर की दुनिया में तो इस चीज़ की उम्मीद है ही। हम जब अपने मुल्कों में आते हैं और हर जगह औरत को देखते हैं और फिर वो रंग रूप नहीं है जो मतलूब था, तो तकलीफ़ होती है। और हम बहुत जल्दी अपनी कामयाबी और नाकामी के मेयार को बदलते जा रहे हैं, ये तो हम सब को सोचना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि कौम के दिल से एहसास जिया जाता रहा। मगरब में रहने वाली औरतें हों या अपने मुल्क में रहने वाली औरतें हों, जब जिंदगी में एक कामयाब कैरियर हासिल करना मकसद हयात बन जाए और जब तालीमी इदारे आपके लिए वो मकसद ना पूरा कर सकें जो मकसद था, वहाँ से अच्छी बेटियाँ, अच्छी बहनें, अच्छी माएँ तैयार हों जो आने वाली नस्लों की परवरिश कर सकें, और इसकी बजाय वहाँ से डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और पायलट और इसी तरह के शोबे इख्तियार करने को कामयाबी कहा जाए, तो उस कौम का मुस्तकबिल बदल जाता है। आज हमारे अपने मुल्क में ये सोच आ गई कि औरत को या लड़की को पढ़ाएंगे नहीं तो क्या होगा, अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। कैरियर ही तो है जिससे इज्जत मिलती है। इसीलिए आप देखिए कि शादियां देर से हो रही हैं, होती नहीं, होने लगे तो कहते हैं अब इसने पढ़ना है। कैरियर बनाना शादी के राह की इतनी बड़ी रुकावट बन गई कि जी पढ़ेंगे तो फिर, अभी शादी के बाद कोई पढ़ने नहीं देता। फिर अल्लाह अल्लाह करके शादी अगर हो जाए तो बच्चों की पैदाइश नहीं है, अभी नहीं जी, अभी हम सेट हो रहे हैं, अभी हमारे कारोबार नहीं है, फलां नहीं है, हम सेट हो जाए। फिर बच्चा पैदा हो गया तो दूसरे बच्चे और पहले बच्चे के बीच का गैप लिया, क्योंकि औरत के तकाजे कुछ और हो गए। याद रखिए, वो ख़वातीन जो कोई काम नहीं करती, वो अपने माशरे की तरफ से मुस्तकिल दबाव का शिकार रहती हैं। ऐसे लगता है कोई जुल्म हो रहा है कि इन्हें भी कोई काम करना चाहिए। और फिर मुसलमानों की एक बड़ी सोच इस सोच से मुतासिर हुई, नतीजा क्या निकला, बहुत से वालदैन भी अपनी बेटियों को कामयाब कैरियर इख्तियार करने की फिरकत देने लगे। जल्दी शादी कैसे होगी अगर लड़की डॉक्टर नहीं बनी, अभी अभी उसका कैरियर ही पूरा नहीं हुआ, अभी उसने यूनि के 4 साल नहीं पूरे किए। अब नतीजा क्या होगा कि वो लड़की जिस उम्र में जाती घर में और कच्ची गली की तरह ढल जाती, वहाँ के माहौल को देखती, अभी उसमें अना ना होती, कुछ करने का इतना एहसास नहीं था, तो शादियाँ अच्छी निभ जाती थी। तो आप कह लीजिए कि सिर्फ इस सोच ने हम मुसलमानों की पूरी ज़िंदगी को मुतासिर कर दिया, और फिर इसी तरह से आगे वो अच्छी माँ कैसे बनेगी। तो सवाल लिखिए एक जुमला, नेक्स्ट हमारा जो होगा वो क्या है कि कामयाब औरत के इस मगरबी मेयार का इस्लामी दुनिया पर क्या असर पड़ा। तो चंद बातें जो बहुत क्रूशियल हैं, कड़वी हैं, लेकिन सच है। मगरब हमेशा ये चाहता है, यानी आप कह लीजिए कि नॉन मुस्लिम कल्चर की हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि मुसलमान उनके दिए हुए मेयारात पे, उनके दिए हुए स्टैंडर्ड्स पर अपनी जिंदगियों को परखें। इसके लिए वो मीडिया पर, इसी तरह एजुकेशनल सेटअप पर रात दिन एक करते हैं कि लोगों को वो लाइफस्टाइल ड्रामों, फिल्मों और इसी तरह की चीज़ों में दिखाया जाए जिससे फिर मुस्लिम लोगों की राय भी बदले। आप देखिए, सिगरेट से लेकर शराब, कबाब और कोई भी चीज़ है, उसको मीडिया से प्रमोट किया गया ना, वरना ऐसी ही खिलाफ शरा चीज़ें और ऐसी खिलाफ तबा चीज़ें कौन लेगा। लेकिन मीडिया परसेप्शन आज के दौर के दो बड़े मला हैं, एक मीडिया और एक तालीमी इदारे, उस्ताद। आज इन दोनों पे पूरी तरह ग्रिप है उनकी, जो इस्लाम को जानते भी नहीं है। लिहाजा एक तरफ मीडिया के जरिए से कामयाब औरत का एक मेयार दिया कि वो जिसका अपना कैरियर हो। इसके लिए एक मैगजीन वर्किंग मदर्स के नाम पे, उन्होंने उसमें अफगान औरतों के हवाले से एक मजमून दिया जिसमें ये लिखा हुआ था कि बहुत सी ख़वातीन जो अपने माशी मामलात की वजह से काम करने पे मजबूर होती हैं, और अफगान ख़वातीन का एक बढ़ता हुआ गिरोह अपने कैरियर के दोबारा हसूल की कोशिश कर रहा है, ताकि वो अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सके जिसको वो तालिबान की हुकूमत के दौरान छोड़ने पर मजबूर थी। यानी हर मुसलमान मुल्क में ये जरासीम घुसाए जा रहे हैं। इस मजमून में एक लड़की का इंटरव्यू भी शामिल था जिसमें कहा गया कि वो अफगान खवातीन की अपने हकूक की लड़ाई की हौसला अफजाई करती है। वो लड़की कहती है कि मैंने इन खवातीन को बताया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हों क्योंकि तुम मर्दों के बराबर हो। फिर इसी तरह उन्होंने कहा कि बुरके में मत बैठो, घरों में मत बैठी रहो, बाहर निकलो, अपने बच्चों और खाविंद को ये साबित करके दिखाओ कि तुम एक औरत हो, तुम हर काम कर सकती हो, अपने फैसले भी खुद कर सकती हो। अब मुझे बताइए ये किस की स्पून फीडिंग है? जब आप ऐसी चीज़ों को पेश करेंगे तो वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ, वो औरतें जिनके जहनों में भी कभी ये सवाल नहीं आएगा वो भी सोचेंगे। जल्दी शादी को वो जुल्म करार देंगे, माँ बाप को वो जालिम करार देंगे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि कुछ इदारे हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस्लामी दुनिया में ऐसे तमाम तसव्वुरात को परवान चढ़ाने के लिए कुछ तरक्याती प्रोग्राम है। अगर मैं सिर्फ उनके एब्रीवेशन बोल दूँ तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। यूनिफेम, फिर UNDP, यूनाइटेड नेशन का एक तरक्याती प्रोग्राम है। फिर इसी तरह इक्वामे मुतहदा का फंड बराए आबादी, UNPF, और इसी तरह कुछ दूसरे प्राइवेट इदारे भी काम कर रहे हैं। 2001 में UNDP की तरफ से पाकिस्तान में मीडिया में औरत को कैसे पेश किया जाए इस इनवान से एक सर्वे किया गया था जिसमें ये राय दी गई थी कि टीवी के ड्रामों और प्रोग्रामों में खवातीन को बहादुर दिखाया जाए, पूरे एतमाद किरदार में दिखाया जाए और इस सोच को ख़त्म किया जाए कि एक कामयाब कैरियर की हामिल खातून आइडियल बीवी या माँ नहीं बन सकती। अब सवाल ये कि कामयाब औरत के मगरबी मेयार का असल सोर्स क्या है? वट इज़ द सोर्स ऑफ दिस थाट? असल माखज़ क्या है कि ये हो? तो वो माखज़ है सेक्युलर सिस्टम, सरमायादाराना निज़ाम, जिसमें मादी फायदे और नफ़े की बुनियाद पर कामयाबी को परखा जाता है। वो खातून जो कारोबार करती है, या डॉक्टर है, या वकील है, या अकाउंटेंट है, वो एक कामयाब औरत है। वो माशी लिहाज से माशरे में अपना हिस्सा डालती है, चाहे वो ये हिस्सा खिदमात की शक्ल में दे रही है या फिर टैक्स की शक्ल में दे रही है। उसी तरह उनके नज़दीक एक घरेलू माँ या बीवी माशरे में कोई हिस्सा नहीं डाल रही, उसको मनफी नाज से दिखाया जा रहा है कि वो नाकाम औरत है। 2002 में इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल स्टडीज़ में, ये भी गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया जो है उसके अंडर का एक इदारा है, एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें बताया गया कि बच्चों की मौजूदगी माँ के लिए रोज़गार की फराहमी की राह की रुकावट है और बच्चों की देखभाल की काबिले बर्दाश्त और आसान रसाई की कमी की वजह से माँ की कमाई पर उल्टा असर पड़ रहा है। तो गोया के मतलब यह कि बच्चे मत पैदा करो, बच्चे हो जाएंगे तो औरत कमा नहीं सकेगी, बच्चे हो गए तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और आज आप देखिए कि यही कुछ है कि लोगों ने औरत को भी एक पैसों की मशीन बना लिया। किसी मुआशरे में मेल और फीमेल, यानी मुजक्कर और मुअन्नस, इस मुआशरे में एक नई तारीफ जारी की जा रही है। और आज तो आप देखिए कि और कितने नाम है जिसकी जरूरत भी नहीं बात करने की। औरत और मर्द का तो नाम ही खत्म कर दो, जेंडर खत्म कर दो। आज तो पैदा होते बच्चे को आप लड़का नहीं कह सकते, लड़की नहीं कह सकते, वो बड़ा होकर खुद डिसाइड करेगा। और वो डिसाइड कर ले और आप उसके ऑपोजिट नहीं कर सकते, वो तो एक अलग मौजू है, वो तो आज आज के दौर का एक दुखता हुआ नासूर है। लेकिन माशरे में एक नई तारीफ इंट्रोड्यूस कराई जा रही है और वो क्या है कि एक खातून चाहे वो माँ हो या बीवी हो, इसे अपना कैरियर जारी रखने का इतना ही हक हासिल है जितना एक मर्द को शौहर या बाप होने की सूरत में। ये तारीफ भी मर्द और औरत की बराबरी के वेस्टर्न तसव्वुर से ली गई है। और ये तसव्वुर यूं है कि ये देखने की बजाय कि मुआशरे में औरत और मर्द को कैसे देखा जाता है, बल्कि दोनों का किरदार बराबर होना चाहिए और इसका फैसला इनफरादी तौर पे हो। इसी से ये निकलता है कि औरत को मर्द के बराबर रोजगार की फराहमी का भी हक हासिल हो, खवातीन वो काम और नौकरियां भी कर सकें जो मर्द करते हैं, हत्ता कि अपनी शादी से मुतल्लिक मामलात का फैसला भी खुद करे कि वो बच्चों की देखभाल करेगी या कमाएगी। बराबरी का ये तसव्वुर अपने अंदर एक जालिमाना रविश रखता है जिसको आप कह सकते हैं कि इंसानी अक्ल से बनाए हुए सरमायादाराना निज़ाम में औरत को भुगतना पड़ रहा है। आप सोचिए तो सही, जिस रब ने दुनिया बनाई उसको सब पता था, और ये तसव्वुर इस मुतस्सब माहौल की पैदावार है जो इंग्लिश माशरे में औरतों के साथ इम्तियाजी बरता जाता है। दूर के ढोल सुहाने, आप कहते हैं बाहर की औरत बड़ी खुशकिस्मत है, उसकी अपनी गाड़ी है, वो की रिंग उछालती है और उसके हाथ में सेलफोन है। नहीं, औरत बहुत दुखी है। याद रखिए, औरत इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है, आज भी कल भी। वो ना तो बाहर के काम पूरे कर पा रही है ना घर के, या बाहर के करके आएगी तो घर के नहीं करेगी तो घर बिगड़ा। शौहर को घर में आने पे खाना भी चाहिए, सफाई सुथराई भी चाहिए, उसको अपनी खुशी का सामान भी औरत से मुहैया करवाना है, तो वो औरत दोहरी जंग कैसे लड़े? 1985 तक इंग्लिश कवानीन के तहत औरत को शहरी तक तसव्वुर नहीं करते थे, यानी सिटीजनशिप औरत को नहीं मिलती थी, जिसके बाद फिर औरतों के हकूक और बराबरी के हक की आवाजें बुलंद हुई और औरत को फिर करते करते आज मर्द के बराबर नहीं, मर्द से ऊपर भी खड़ा कर दिया कि जब तक औरत का कैरियर नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी माली तौर पे, वो मर्दों के बराबर आ नहीं सकेगी। दूसरी जंग अजीम के बाद काम करने वाली खवातीन की बहुत हौसला अफजाई की गई ताकि वो मुल्क की इकोनॉमिक्स में अपना हिस्सा डालें। इसी तरह से आप अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें तो मगरबी ताकतों ने उस्मानी खिलाफत के अंदर भी औरतों के हकूक और बराबरी की आवाज़ उठाई। यानी ये कोई नई बात नहीं, वो कहते हैं ना पुरानी शराब नई बोतलों में है, हर दौर में ऐसी बातें हुई लेकिन आज के दौर पर ये पीक पे आ गया। मुस्लिम माशरों में हमेशा औरत का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के नाम पर बातें की गई। इसी तरह द मिडल ईस्ट नाम की एक किताब है, वेस्टर्न एक मुसन्निफ़ है बर्नार्ड लिविस, तो उसने उसमें एक टॉपिक रखा आज़ादी से आज़ादी तक, यानी फ्रीडम टू फ्रीडम। इसमें वो लिखता है कि औरतों की आज़ादी की एक बड़ी वजह मुआशी ज़रूरत है, या मुआशी ज़रूरत थी। मईशत के अंदर जो भी चीज़ें हैं वहाँ औरत को चूँकि अपने मुआशी चीज़ों के लिए इंडिपेंडेंट करने की ज़रूरत है, इसलिए फिर उसने उसको नया रंग दिया, विमेन लेबर के नाम पे, यानी लेबर्स जनाना खवातीन की हों। औरतों को फौज तक में भर्ती करने का हक दिया गया। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जंगों के दौरान और बाद में भी ऐसा हुआ, कई कवानीन बदलते गए। असल बात है, इसको छोड़ दीजिए, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनके क्या असरात है वो खुद भुगत रहे हैं, खानदान टूट रहा है, औरत पिस रही है, और तीर तलवारों गोलियों से नहीं, खानदानी निज़ाम के टूटने से ये माशरे टूट रहे हैं और टूटेंगे। सवाल लिखिए कि कामयाब औरत के इस नुक्ते नज़र का खानदानी ढांचे पे क्या असर पड़ता है? तो आप खुद ही देख लीजिए, कैरियर की तलाश को औरत की ज़िंदगी का जब असल मकसद बना दिया तो फिर वेस्टर्न माशरे में बहुत से मसाइल जन्म लिए। इसकी वजह से उनका फैमिली सेटअप ख़त्म हुआ, शादीशुदा ज़िंदगी में टेंशन आ गई, शौहर और बीवी एक दूसरे के साथ बहुत कम वक्त गुजारते हैं, नतीजा क्या हुआ, तलाक की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, बच्चों की तादाद में कमी हुई, फिर वालदैन का बच्चों के साथ वक्त बहुत कम गुजरा, वालदैन के दरमियान ताल्लुकात में कई मसाइल हो गए, और यही सारे मसाइल आज मुस्लिम या नॉन मुस्लिम सोसाइटीज़ में जो इस तर्ज पे जी रहा है उनके अंदर पड़ रहे हैं। नतीजा क्या हुआ, बहस और मुबासा, आखिर में तलाक, चपकलश है, चेहरों पे खुशी नहीं है, वो नहीं, कंधों पे जिम्मेदारियों का बोझ है, माँ और बच्चे का जो करीबी ताल्लुक वो ख़त्म हो रहा है, बच्चा माँ की गोद की बजाय किसी और की गोद में पल रहा है, बच्चों की बेबी सिटिंग आज आपके सेलफोन कर रहे हैं, बच्चे 3 साल की उम्र में स्कूलों में भेज दिए जाते हैं, नतीजा क्या कि माँ अपने बच्चे के साथ कम से कम वक्त गुजारती है, हज़ारों की फीसें देकर और कई मील दूर जाकर छोड़ने और पिक एंड ड्रॉप पे सारा दिन गुजर जाता है। कभी आपने सोचा कि 2-2 फुट के बच्चे हैं, 1-1 फुट का बच्चा है, उसके ऊपर इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्या है? अगर ये सारे काम माँ कर लेती तो बाहर की दुनिया से बच्चे का इतना एक्सपोजर ना होता और वो एक पूरी प्रोटेक्टेड सोच के साथ बड़ा होता। नतीजा हुआ कि स्कूलों का माहौल फ़र्क है, और ये अफसोस की बात है, बाहर की नहीं इस मुल्क की दुनिया को मैं देख रही हूँ आज जाने के बाद। यकीन करें, जब हम बाहर होते हैं तो हम और तरह सोचते हैं, अपने मुल्क में आते ही खून की तरह दिल पे ऐसे जैसे कुछ चीज़ गिरती है, दिल जलता है कि अल्लाह हमारे मुल्कों में ही हो रहा है, स्कूलों का माहौल ख़राब है, इतनी हज़ारों की फीसें हैं, बच्चे स्कूलों में वो सब देख रहे हैं जो घरों में आप कभी रोक भी लेते हैं, गैर इस्लामी शिनाख्त है, वालदैन की बात माने ना माने उनकी मर्जी है, नज़रअंदाज करते हैं, होते होते आप देखिए बचपन से जवानी और फिर अल्लाह रहम करे जो कॉलेज और स्कूलों के माहौल देखे जा रहे हैं, फिर वो सब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। तो मुझे बताइए कि फिर आज की कामयाब औरत कहाँ कामयाब है, इतनी खस्ता हाली है कामयाब औरत की कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। वो औरत जो कल तक बिल्कुल नीचे थी, अब आज उसको उससे ऊपर कर दिया जा रहा है, जिसके नतीजे में वो बिल्कुल अपने आप को परेशान पाती है। आप देखिए कि ख्वातीन का सारा दिन एक काम से दूसरे काम को करते गुजर जाता है। अपनी फैमिली के लिए नाश्ता तैयार करना, शोहर और बच्चों के लिए लंच तैयार करना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर अगर वो जॉब करती है तो अपनी नौकरी के लिए जाएगी, दफ्तर में पूरा दिन काम करेगी, फिर स्कूल से बच्चों को लेने के लिए आएगी जाएगी, रात का खाना तैयार करना, बच्चों का बिस्तर तैयार, अगले दिन की तैयारी। ऐसी औरत फिर क्या सोचती है, मैं तो कोई काम सही नहीं कर पा रही, थकन है, टेंशन है। एक वेस्टर्न राइटर हैं लीसा, अपनी किताब लाइफ्स वर्क कन्फेशन ऑफ एन में वो लिखती हैं, यानी उनकी किताब क्या है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम में से कोई एक खातून भी 100% वक्त अपनी नौकरी को नहीं दे सकती और ना 100% अपनी फैमिली को दे सकती है, यानी ना 100% आप फैमिली को देख पा रहे हैं, ना 100% आप उनको देख रहे हैं। क्या इससे बड़ी एक औरत की नाकामी और कोई होगी? फिर औरत जब बाहर निकली आज़ादी के नाम पे तो मुआशी जिंस बन गई, मर्दों के लिए खिलौना बन गई। बराबरी के तसव्वुर की भी हकीकत देख लीजिए, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। देखिए, कुर्सी और मेज़ की मिसाल मैं अक्सर देती हूँ, आपको भी यहाँ ये देना चाहूँगी। कुर्सी ज़रा सी नीची, मेज़ ज़रा सा ऊंचा तो काम होगा? इस वक्त भी अगर मेरा ये लैपटॉप मेरी चेयर के बराबर होता तो मैं इससे फ़ायदा ना उठाती। औरत का मिजाज कुर्सी वाला, बैंडेड, सॉफ्ट, ऊपर कुशन, पैडेड। मर्द बराबर कवाम, ऊंचा, सख्ती। एक थोड़ा सा ये अलैहिन्ना दर्जा का फ़र्क है जो चेयर और टेबल के बिटवीन होता है। लिहाजा इस सारे मौजू को अगर हम वाइंड अप करें तो हमें इसमें इस्लाम को आम करना पड़ेगा, इस्लाम और कामयाब औरत का जो सही तसव्वुर है वो सामने रखना पड़ेगा, और इस सारे मामले को इंशाल्लाह देखने के लिए हम दोबारा फिर एक नशिस्त कर सकते हैं। लेकिन आज के वक्त के लिए सिर्फ एक बात हमने छेड़ी है, और वो क्या है कि वो ख्वातीन जो मुस्लिम माशरों में अपने इस सारे रवैये को समझते हुए आज स्टैंड लेंगी तो कल अल्लाह ताला चाहेगा तो उनके लिए बहुत सारी बेहतरी होगी। बाकी इसमें और बहुत से जो आपकी तरफ से सवाल थे, जो आप लोगों ने कुरान सुन्ना वालों ने हमसे ये एक लेक्चर लिया, तो इस पे इंशाल्लाह आप सवाल सारे ले लीजिए और भिजवा दीजिए एडमिन्स के थ्रू। इंशाल्लाह फिर हम एक और नशिस्त रख लेंगे जिसमें फिर हम इस्लाम और कामयाब औरत का सही तसव्वुर क्या होना चाहिए। एक किस्म की आज डायग्नोस हुई है, चेकअप्स हुए, अब आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई भी नशिस्त जब भी अल्लाह ने चाह होगी तो उसमें हम इसका इलाज देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब से राज़ी हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।